तभी समर्थ ने अर्पिता को मंदिर के सामने खड़ा किया और सामने रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं यहां भगवान को साक्षी मानकर अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। इतना बोलकर समर्थ ने मंदिर में रखे हुए माता रानी के श्रृंगार के सामान के पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हुआ। समर्थ की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समर्थ क्या करने वाला है। तभी समर्थ ने सिंदूर की डिब्बी को खोला और उसमें से सिंदूर निकाला और उसकी मांग में भर दिया। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता की मांग भरी, अर्पिता ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मासा, जो अभी तक बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थीं, उनके चेहरे पर 12 बज गए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि समर्थ इस तरह की कोई हरकत करेगा। समर्थ अर्पिता की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और उसने आगे बढ़कर अर्पिता के गाल पर अपना हाथ रखा। अर्पिता ने अपनी आंखें खोली और वो समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ उसके बिल्कुल करीब आकर धीमी आवाज में बोला, आज से आप हमारी धर्मपत्नी हैं अर्पिता। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु समर्थ के बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु, मैं अगर अर्पिता से प्यार करता हूं तो मैं अब हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूं। मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, मैंने ठीक किया ना? अभिमन्यु अर्पिता की तरफ देख रहा था। अर्पिता ने समर्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया और अभिमन्यु कहीं ना कहीं जानता था कि अर्पिता समर्थ के साथ ही खुश रह सकती है, इसलिए उसने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से अपनी पलकें झुकाई। तभी इप्सिता अर्पिता के पास आकर धीमी आवाज में बोली, अर्पिता, आप खुश हैं ना? अर्पिता ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। वहीं मासा उन दोनों की तरफ गुस्से से घूरते हुए देख रही थी। तभी समर्थ ने मासा के सामने जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, हम जानते हैं कि आपको हमारा इस तरह से अर्पिता के साथ रहना पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हमें जो सही लगा हमने वही किया। समर्थ की ये बात सुनकर मासा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपने क्या किया है? समर्थ धीमी आवाज में बोला, हम माफी चाहते हैं मासा, लेकिन हमारे पास उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था। हमें जो सही लगा हमने वही किया। मासा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपकी नजर में ये सही है, ये मत भूलिए अर्पिता पहले से ही शादीशुदा है। मासा की बात सुनते ही समर्थ ने कहा, नहीं मासा, वो शादीशुदा नहीं है, उनका डिवोर्स हो चुका है और अब वो आज से हमारी धर्मपत्नी है। मासा समर्थ पर हाथ उठाने जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु आगे आया और उसने मासा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, एक मिनट हमारी बात सुनिए। मासा ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखा और उसे चुप करते हुए कहा, बस अभिमन्यु बस, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। आप इस महल के राजा बन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप। मासा बोल ही रही थी कि तभी सामने खड़ी पल्लवी और नरेंद्र, जो अभी तक ये सब तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे। नरेंद्र ने पल्लवी के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अपनी बोली बोलना शुरू करो, यही टाइम है इन लोगों को सबक सिखाने का। पल्लवी ने जैसे ही नरेंद्र की ये बात सुनी, वो मुस्कुराई और दो कदम आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, बस यही सब तो देखने को रह गया था। अब ये लड़का राजपरिवार की लड़की के साथ शादी करेगा और क्यों नहीं, इतनी छूट जो दे रखी है आप लोगों ने इसे। पल्लवी समर्थ की तरफ देखकर ये सारी बातें बोलती जा रही थीं। समर्थ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने अभी भी अर्पिता के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। तभी अभिमन्यु ने पल्लवी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, चाची सा, हमारे परिवार के बीच में आप ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। पल्लवी ने कहा, वैसे भी हम तो पहले से ही जानते थे कि अर्पिता के लक्षण ठीक नहीं है और अब तो ये बात साबित भी हो गई। ये सब कुछ इन दोनों ने ही मिलकर प्लान करके रखा होगा, वरना इस समर्थ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो इस तरह भाभीसा के सामने अर्पिता की मांग में सिंदूर भर दे और उसे अपनी पत्नी बोल दे। क्यों अर्पिता, यही सब रात में बैठकर प्लान किया है ना? पल्लवी की बात सुनकर अर्पिता ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हैं चाची साहब? पल्लवी आगे बढ़ी और समर्थ और अर्पिता को घूरते हुए कहने लगी, सच बोल रही हूँ मैं, वैसे भी सच तो हमेशा ही कड़वा होता है। अर्पिता समर्थ की तरफ देख रही थी और पल्लवी की इतनी जली कटी बातें सुनकर वो समर्थ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी। समर्थ ने अर्पिता के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं अर्पिता, आप इस तरह लोगों के कुछ शब्दों की वजह से हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। आप हमसे प्यार करती हैं और हम आपसे प्यार करते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लीगली हम दोनों एडल्ट हैं और हम एक साथ रह सकते हैं। समर्थ की बात सुनकर अर्पिता एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने मासा और घर के बाकी सभी लोगों की तरफ देखा। अभिमन्यु मासा को समझाने की कोशिश कर रहा था और वहीं इप्सिता अर्पिता के बगल में खड़ी हुई थी। पल्लवी और नरेंद्र उन दोनों को घूरते हुए देख रहे थे और बुरा भला बोल रहे थे। अर्पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो मासा की तरफ देखने लगी। मासा ने समर्थ की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, समर्थ, आपने अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी मान लिया, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि आपके घर वालों ने तो साफ तौर पर अर्पिता को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, अब कहाँ रहेगी अर्पिता? समर्थ ने जैसे ही मासा की ये बात सुनी, वो अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, अर्पिता हमारे साथ रहेगी मासा, हम अर्पिता को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम अपने मम्मी पापा के बिना भी अपना गुजर बसर कर सकते हैं। हमारे पास अपना घर है और हम वहीं पर अर्पिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर मासा ने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। तभी पल्लवी आगे बढ़ी और बोली, अरे ये तो सब कुछ तय करके बैठा हुआ है, हम तो बेकार में ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभिमन्यु, जो इतनी देर से अपनी चाची जी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब अगर किसी ने भी अर्पिता और समर्थ के खिलाफ एक लफ्ज की बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके पास आई और उसने मासा और अभिमन्यु की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, भाई सा, मासा, हमने हमेशा आप लोगों की बातें मानी है और जब जब जैसा जैसा आपने हमें करने के लिए कहा हमने वैसा ही किया है, लेकिन अब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है, हम उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। मासा, हमें प्लीज उनके साथ रहने दीजिए, प्लीज। इतना बोलते बोलते अर्पिता वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम अब समर्थ की पत्नी हो और तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। अभिमन्यु ने इतना बोलकर वहीं खड़े घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता का सारा सामान पैक करके लेकर आओ।